ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ظاہر کوشش کریں گے کہ سوالات کو ہم نپٹا سکیں کسی حد تک. ظاہر آج کا سیشن میں نے پہلے عرض کیا تھا، تھوڑا سا لمبا ہونا تھا، اور اب سوالات کی طرف. لکھا ہے، ہم عوام جب سیاست دان کو چنتے ہیں تو اس کی وجہ تو ذاتی علاقائی مفاد پر محیط ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ کس نظام کا پیرو ہے اور اس کے کیا فوائد و نقصانات ہیں. یہی مشکل ہے کہ ہم جب کسی کو چنتے ہیں تو ہم مفادات کے تحت چنتے ہیں، یہ بصیرت ہمارے اندر نہیں ہے کہ بھائی بندہ اس لیے مت چنو کہ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے، اس لیے چنو کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. اور یہ ہمارے وہی میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا گیا ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا کام سیدھے راستے نہیں نکلے گا، جب تک تمہارا بندہ کہیں اوپر نہیں ہوا تمہارا کام نہیں نکلنے والا. وہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ گورنر کے پاس وہ ایک نیوز رپورٹر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا گورنر سے کہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے بجلی کا کھمبا لگوا دو، کوئی یہ کہہ رہا ہے روڈ بنوا دو، تو یہ کام حکومت کیوں نہیں کر رہی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال اس علاقے کا ایک نمائندہ بھی تو پارلیمنٹ میں گیا ہوا ہے، یہ اس سے کیوں نہیں کہہ رہے. تو سب کو معلوم ہے کہ چینلز خراب ہوئے ہیں، جو ایگزیکٹو چینل ہے پوری گورنمنٹ اور بیوروکریسی یہ اپنا کام نہیں کر رہی، جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی. ہر ایک آدمی اس چکر میں کہ میرا کوئی ایک جس کو ہم لوگ جیک کہتے ہیں، ایک جیک نکل آئے تو اس سے کام ہوگا. ظاہر ہے اس سے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہوگا. اب یہ قربانی بہت مشکل ہے کہ کوئی یہ بصیرت دکھائے. انہوں نے کہا کہ کووڈ ویکسین کے بارے میں آپ کا کیا ویو، کائنڈلی ایکسپلین سائنٹیفکلی آن ریلیجیس ٹرمز. ماشاء اللہ. تو میں ابھی دو تین ملکوں کے بارے میں کمنٹ کر رہا ہوں تو ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا، اور اب میں اس کے سائنٹیفک کو بھی جاؤں. بھائی میں کیا سائنٹسٹ ہوں، مجھے کیا پتا کہ اس کے کیا سائنٹیفک ویلیوز ہیں. ہاں اجمالاً مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بھی ویکسینز بنے ان کے ٹرائلز کمپلیٹ نہیں ہوئے ہوئے. ہم سب کو معلوم ہے یہ تیزی تازی میں بنا دیے گئے ہیں، اور یہ باڈی میں جا کے کیا کریں گے ابھی ان کو بھی نہیں پتا جو انہوں نے بنائے، اور نہیں معلوم انہوں نے لگوائے بھی ہیں نہیں لگوائے. فائزر کمپنی کا شاید ڈائریکٹر تھا جسے پوچھا تم نے لگوا لیا، کہنے لگا نہیں میں نے نہیں لگوایا. بندہ خدا تم نے خود نہیں لگوایا تو ہمیں کیوں ٹھوکے چلے جا رہے ہو؟ اور اس کے بعد ہوگا کیا اس کا یہ نہیں معلوم. بھائی ایک میڈیسن، یہ لوگ جو خود کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویکسین کم سے کم 2 سال ٹرائل پر رہے تو پتا چلتا ہے کہ باڈی میں کرے گی کیا. کتنا ٹرائل ہوا ہے اس کا؟ کچھ مہینے، بہت لمیٹڈ اسکیل کے اوپر، وہ بھی سب جھوڑ جھاڑ کے ہوا ہے. سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو ایکچولی سائنس ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ پیٹرن ہے کام کرنے کا. وہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ بھائی جلدی میں کرنا پڑا چونکہ آبادی ختم ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. تو یہ اس کا حل ہے کہ چونکہ جلدی میں ایک بیماری سے لڑنا تھا تو ہم ایک اور بیماری لے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں کہ جو ڈاؤٹ فل ہیں، لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ ہم ایک ایسے گیم میں پھنسا دیے جائیں گے جہاں سے آپ کا اس شہر سے نکلنا ہی اس صورت میں ہوگا جب آپ ویکسین لگے ہوئے ہوں گے. پاکستان میں خوبی ہے، نہ ویکسین ہے نہ لگانے پہ بندش ہے. گھومو کیوں، ہے ہی نہیں. بھائی ان ملکوں میں پیپر چیک ہو رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے لگایا ہے، مثلا یو اے ای میں مثلا کہہ رہے ہیں بھائی آپ گورنمنٹ آفس میں جائیں گے تو آپ کے پاس وہ کیو آر کوڈ ہونا چاہیے جس میں پتہ ہے کہ آپ کو ویکسین لگا ہے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی ہے ہی نہیں، تو ہم فارغ ہیں، اللہ کا شکر ہے گھوم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے صرف ایک ڈر ہے، یہ ویکسین وائرس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہ لے آئے، اس وقت ڈر یہ ہے. اللہ کرے کہ اس سے بہتر ہو اور انسانوں کو اور کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر ڈالیں، لیکن آثار اچھے نہیں ہیں، آثار کم سے کم اچھے نہیں ہیں. یعنی جو انڈیپینڈنٹ بعض لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، دیکھو ہم لوگ سائنٹسٹ نہیں ہیں، ہم لوگ ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم لوگ صرف انہیں کی باتیں سنتے ہیں. اس کے سوا ہمارے کوئی لیب نہیں ہے کہ ہم جا کے اپنی لیب کے اندر بھیجیں گے بھائی اس میں کیا ہوا. لیکن وہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے پیچز کیے ہیں، مثلا اس جگہ ٹرائل ہوا ہے رزلٹ 94% ہے سکسیس کا، اگر وہ ساری چیزیں نکال دیں کہ جو انہوں نے پیچ کیا ہے، اس کو اگنور کر دو، اس کو اگنور کر دو، رزلٹ 94% ہے، تو کہہ رہے ہیں اصل رزلٹ 19% ہے. जिन कंपनीज ने वायरस बनाए हैं उनमें ऐसी कंपनीज भी मशहूर हैं उसका वायरस ठीक ठाक चल रहा है, जिसको बने हुए 10 साल हुए उसने आज तक कोई वैक्सीन बनाया ही नहीं था, ये उसका पहला वैक्सीन है। तो क्या होने वाला है आगे, अल्लाह जानता है क्या होने वाला है, लेकिन बहरहाल आसार अच्छे नहीं लग रहे। अलबत्ता चाइनीज़ वैक्सीन और रशियन वैक्सीन में एक खूबी है कि वो जीन थेरेपी नहीं है, कम अज़ कम एक अगर एक टर्म को मैं इन लोगों से सीख के इस्तेमाल कर लूँ तो वो कम अज़ कम वो नहीं है, इसका मतलब उसका ख़तरा इतना नहीं होगा। लेकिन ये जो दूसरी कंपनी से आ रहे हैं यूके और अमेरिका से आ रहे हैं, उसको तो रहबर मौज़म ने ख़ुद मना किया है कि यह मुझे नहीं चाहिए, यह हमें नहीं चाहिए ईरान के अंदर। उसकी वजह एक ये भी है, प्रूफ्स पीछे नहीं है, पैचअप्स हुए हुए हैं, सबसे बड़ी मुश्किल ये जीन्स थेरेपी है और वो एक अलहदा स्टोरी बन गई है। बार रहबर ने इस साल को तौलीद पुश्तबानी या माने जुदाई करार दिया, इसकी क्या मतालब है, हमारी ज़िंदगी में कैसे असर रखते हैं। रहबर ने कहा कि वो हर साल को एक टाइटल देते हैं, इस साल को उन्होंने टाइटल दिया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर एक बूस्ट और उसके मुकाबले में और उसके साथ उन्होंने कहा कि सपोर्ट इसको कैसे करना है और जो इसके अंदर हर्डल्स हैं उन्हें कैसे दूर करना है। तो तीन जो पैरामीटर्स हैं, एक प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करना है, उसमें सर्ज कैसे आए, जहश उन्होंने कहा सर्ज बिल्कुल प्रोडक्शन के अंदर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर। दूसरी बात यह कि सपोर्ट कैसे करना है इसको, और तीसरी बात यह कि इसकी हर्डल्स को कैसे ख़त्म करना है। तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि जो कहना हर्डल्स ख़त्म करने हैं, वो ये कह रहे हैं रूहानी जैसे को नहीं लाना, वरना ये कभी प्रोडक्शन बेहतर नहीं होगी। तो ट्रू प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, यानी वाकई वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं और आप, मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, आप में से कुछ लोगों ने शायद नहीं सुनी होंगी तो आप ताज्जुब से देख रहे हैं, तभी ये कुछ भी नहीं है जो वहाँ पर हुआ है इन आखिरी 4-8 सालों के अंदर, बहुत बुरा हुआ है और ये इन साहब की वजह से हुआ है, अल्लाह बेहतर करे बस आगे। हाँ, बहुत अहम टॉपिक था वो, ज़ाहिर है उस पर कोई बात नहीं हो पाई और इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये कह दिया। इन्होंने कहा कि पॉप और आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी की मुलाकात पर कुछ रोशनी डालें। ये जैसे हर वाक़े के अंदर होता है, बहुत सारे बैकग्राउंड्स होते हैं और बहुत सारे असरात होते हैं, और ये जो काम हुआ है ये ज़ाहिर तारीख़ के अंदर एक मुनफरिद काम था, मुनफरिद काम था कि मिसाल के तौर पर कैथोलिक पॉप वो अपने मुल्क से निकले और वो इस तरीके से नजफ़ अशरफ आए, और नजफ़ अशरफ आकर वो आयतुल्लाह उज़्मा के दरवाज़े तक पहुँचे और जाकर उनसे मुलाकात कर, ये इनक्रेडिबल था, ऐसा बहुत कम हुआ है। अलबत्ता इस पॉप ने इस तरह की कामों को दूसरे फ़िरकों के साथ भी अंजाम दिया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शिया के साथ कह रहे हैं, उसने अहले सुन्नत के साथ भी किया है और जाके मुलाकात की है, लेकिन जितना इको इस मुलाकात ने किया है उतना किसी और मुलाकात ने नहीं किया, और ज़ाहिर है उसकी वजह आयतुल्लाह उज़्मा की अपनी पर्सनैलिटी थी और उनका जो इन्फ्लुएंस था इराक़ के ऊपर। हम सबको मालूम है कि उनकी शख्सियत ने इराक़ को समझ लो आग के दहाने से बाहर निकाला, कि अगर वो रोल ना होता जो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी ने प्ले किया आखिरी 10-15 साल के अंदर, स्पेशली सद्दाम की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद 2003 के बाद, कन्फर्म था कि इराक़ ने ख़त्म हो जाना था, इराक़ के टुकड़े टुकड़े हो जाने थे, कन्फर्म अमेरिका का प्लान ये था कि कम से कम 3 टुकड़े इराक़ के होने थे, और इराक़ का ऑयल इनके हाथ में नहीं रहना था, जो वहाँ पर दाइश ने आना था और जो वहाँ पर लोगों के साथ होना था, और उसके बाद फिर इस हमले ने ईरान की तरफ जाना था और क्या कुछ होना था, ये सब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयतुल्लाह उज़्मा की बसीरत की वजह से। और अलबत्ता ज़ाहिर है कि मुजाहिदों ने जो उनके हुक्म पर सपोर्ट किया, जब आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी ने फतवा जारी किया और कई 10 लाख लोग जमा हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ईरानी सपोर्ट भी उसी हिसाब से जनरल कासिम सुलेमानी की सूरत में और मुख्तलिफ सूरत में, इन सब चीज़ों ने मिलकर इस बहुत बड़े सानहे से बचा लिया जो उससे कई गुना ज़्यादा था जो हमने सीरिया में देखा, उससे कई गुना ज़्यादा होना था, क्योंकि आबादी का यहाँ पे बहुत बड़ा एक हिस्सा था जिसने मुतासर होना था, और तकरीबन काम ख़त्म हो गया था। आप सबको पता है कि करबला से कितने किलोमीटर रास्ते के ऊपर थे, सामर्रा तो उनकी जद में था, नजफ़ को वो चैलेंज कर रहे थे, اور اس موقع کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ان کی بصیرت نے، ان مجاہدوں کی جہاد نے اور ایران کی طرف سے بھی آنے والی سپورٹ وغیرہ نے، ان سب نے مل کر الحمدللہ اس سازش کو ناکام کیا۔ تو شخصیت کا ایک اثر ہے۔ پھر اس پاپ نے جو اس کے بعد ملاقات کے بعد جو انٹرویوز وغیرہ دیے، اس کے اندر آیت اللہ کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اس کو میں ایک معنی میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا نان سائنٹیفک ٹچ اگر آپ اس کو کہیں، مجھے ہمیشہ سے دل میں ایک امید ہے، وہ یہ کہ یقیناً امام کے ظہور سے پہلے ہم لوگوں کے تعلقات عیسائیوں سے اچھے ہوں گے، یقیناً اچھے ہوں گے، اور اگر خدا نہ کرے نہیں بھی ہوئے تو آنے کے بعد تو یقیناً ہونے ہی ہیں اچھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ رہبر امام وقت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو عیسائیت اس کو قبول کرے گی کہ ہاں یہ فرزند رسول ان کے رہنما بھی ہیں، اور قرآن کریم کا بیان کرنا کہ تم سب سے زیادہ ایمان کے نزدیک عیسائیوں کو پاؤ گے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ جتنا زیادہ ہم ظہور کے نزدیک جاتے جائیں گے یہ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور یہ ایونٹ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے، اور آج کے پروگرام میں اس بات کو بھی ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا مجھے، میں مین اس میں ڈالنا چاہیے تھا، کوشچن آنسر میں بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے ڈالنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ ہم ہر گزرتے ہوئے لمحے میں ظہور کو نزدیک ہوتا دیکھ رہے ہیں، کنفرم میں کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے میرے دماغ کے اندر کہ ہم جتنا ٹائم گزر رہا ہے ہم ظہور کو نزدیک ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور رہبر معظم بھی اس کو مسلسل مختلف حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے، کئی صراحت کے ساتھ کہا ہے ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے۔ اچھا کوئی اور چیز نہیں ہے، نیا دور کیا ہوتا ہے؟ انقلاب 42 سال ہو گئے آئے ہوئے، کون سا نیا دور ہے؟ انگلینڈ کے اندر ہے؟ نہیں، وہاں کوئی نیا دور نہیں ہے، نیا دور یہاں پر ہے، یہ ظالموں کی شکست کا دور ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمارے جیسے کو یقین ہے کہ ہم ظہور کے انتہائی نزدیک کی طرف انشاءاللہ۔ خدا انشاءاللہ امام کے ظہور مبارک کو دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، امام کے عوان و انصار کی تعداد طاقتوں میں، ان کی توانائیوں کے اندر، ارتباطات میں، معنویت میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اسی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ختم ہو گیا، نہیں ختم نہیں ہوا، کچھ اور سوال باقی۔ حکومت نے جو ایجوکیشن بورڈ بنائے، جیسے شیعہ بریلوی اہل حدیث، ان کے بارے میں کچھ بتائیں، ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ بورڈ بنانا وہ چلتا رہے گا، میرا اپنے خیال ہے یہ کام ہوتے رہیں گے، امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ کیا مقصد اور ہدف ہے۔ انفارچونیٹلی اگر سسٹم صحیح نہیں ہوتا تو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے پاتے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایک کوشش ہے کہ وہ فنڈامنٹلزم اور ریڈیکلزم کو جو بعض مدارس کے اندر موجود ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں مدارس ختم کیے بغیر۔ ایک زمانہ تھا مشرف کے دور میں، امریکہ کا بھرپور اصرار تھا کہ مدارس ختم کر دو۔ اچھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مفادات بہرحال اس سے تھے کہ مدارس باقی رہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مطالبہ معقول نہیں ہے کہ مدارس شٹ ڈاؤن کر دیے جائیں، نہیں یہ معقول نہیں ہے، اس میں کئی لاکھ لوگ، کم کر کے کہہ رہا ہوں، کئی ملین لوگ ایسے ہیں جن کو سوشل سپورٹ نہیں ہوگی اگر یہ مدارس شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ کنفرم ان مدارس کو ایک اور نظر سے دیکھنا ہوگا، ایک اور طریقے سے اس کو لے کے جانا ہوگا، لیکن بند کرنا کسی بھی طرح سے عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ حکومت اپنی ترکیب میں کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی، بدقسمتی یہ ہے کہ جو مدرسوں کو صحیح کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے پرائمری اسکولس کو صحیح نہیں کر پائیں، وہ اپنے سیکنڈری اسکولس کو صحیح نہیں کر پائے، تو ہم کیا امید لگائیں کہ یہ ان مدرسوں کو صحیح کر پائیں گے؟ یہ ڈاؤٹ ہے یہاں پر، اصل مشکل یہاں پر۔ کیا ایران اور پاکستان کے نئے بارڈر کے حوالے سے کیا ان دونوں ممالک میں کوئی نئے معاہدے ہوئے ہیں، کنفرم ہوئے ہیں اور بہتری کی طرف ہیں، اور پاکستان یقیناً اس سے بینیفٹ لینا چاہتا ہے، ایران بھی بینیفٹ لینا چاہتا ہے؟ میں نے بتایا ایران کے اوپر ٹھیک ٹھاک پریشر ہے کہ بھائی آپ کے اطراف میں 15 ملک ہیں، بہت کم دنیا کے ملک ہیں جن کے 15 ہمسائے ہوتے ہیں، ایران کے پاس 15 ہمسائے ہیں جن کے ساتھ وہ ٹریڈ کر سکتا ہے، پاکستان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ٹریڈ ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک بیریئر جو ہے وہ امریکہ کی پابندیاں ہیں کہ جب آپ بینکنگ سسٹم کے اندر نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ٹریڈ کیسے کرے گا، لیکن अगर ईरानी थोड़ा सा मेहनत करें और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है इसमें, तो ये नया बॉर्डर का खुलना और बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेरे ख्याल में कराची भर में तो ईरानी प्रोडक्ट इतनी भर गई हैं और इतने हमारे दोस्त अहबाब उससे कमा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुकानें खोलनी है कि सबको अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ भाई यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और पैसे के हिसाब से भी बेहतर है। तो अगर ये बहुत बड़े सतह के ऊपर हो तो बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, बहुत कुछ है ईरान के अंदर देने के लिए, बहुत काम है। यानी अगर थोड़ा सा इंसान सोचे कि वो टेक्नोलॉजीज जो ईरान से आ सकती हैं वो क्या हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। ये तो ईरानियों का एक तो एटीट्यूड मुसीबत है, उनका दिमाग ही नीचे नहीं आता है, वो यूरोप से नीचे किसी के साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं। ये रूहानी साहब की जो बदबख्तियाँ हैं ना, इनकी बदबख्तियों में से एक बदबख्ती है। 8 साल इन्होंने ईरानी कौम को, वो जो एक हमारे यहाँ अवामी एक जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, इसके पीछे लगा दिया कि अमरीका के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेवकूफ़ो, अगर अमरीका और यूरोप के बजाय तुम ये एशियन और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते तो उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाता जो तुम अमरीका और यूरोप से लेके करना चाह रहे थे, लेकिन वो उनकी खोपड़ी में ही नहीं आके देती, वो दूसरे इंसानों को इंसान समझने को तैयार नहीं होते। तो सबसे बड़ा उनसुर जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट है। ईरानियों की जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है वो ये कि जो इस सेगमेंट की, रूहानी सेगमेंट की, वो ये कि इनके नज़दीक इंसान की वैल्यू नहीं है। ये जितना भी इन्होंने नारे लगाए हम रिस्पेक्ट और हम इज्जत के ऊपर काम कर रहे हैं, इज्जत सिर्फ ये थोड़ी होती है कि मैं अपने भाई को इज्जत दूँ, इज्जत ये होती है कि जिसको मैं सोशली अपने से बहुत नीचे समझ रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ, उसको इज्जत दूँ। तो अगर ईरानी इस काम को करें, और उनके यहाँ एक हिस्सा है 10-15% जो इस बात को समझता है कि हमें दूसरों को इज्जत देनी है, अगर वाकई गवर्नमेंट की सतह पे इस बात को समझ जाए कि हमें इज्जत देनी है, तो भाई ये जो टर्की जाकर अफ्रीका के अंदर इतना बिजनेस कर रहा है, इतना बिजनेस कर रहा है, इसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ईरान के पास नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको दूसरे को इज्जत देनी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, देखो एक एक आदमी अगर वो शेख ज़कज़की जैसा आता है, पूरे मुल्क को उठा के उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अगर वो वाकई इस पर काम करता है कि मुझे दूसरों को इज्जत देनी। तो इनको भी ये सीखना था, अगर ये सीखते तो ये बहुत सारे काम कर सकते थे। अल्लाह करे कि इनके जो अच्छे लोग हैं वो सामने आए, हुकूमतों पर आएँ और नस्बता बेहतर अफराद कर पाए। लिखा है कि With due respect, how can we get this program of analysis continuously? मेरी जगह कोई और ले आओ, आसान तरीन रास्ता है। मेरे होते हुए तो ये मुश्किल बनी हुई है कि कभी मेरे दिमाग में आता है, कभी मेरे दिमाग में नहीं आता। 1.5-2 साल से जो मैं पर्सनल लाइफ में गुजर रहा हूँ, वो सबको किसी को कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, उन सब के होते हुए तो अभी तो समझ लो कि जो हो रहा है वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मुझे एक बात की बहुत इत्मीनान है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक लतीफ़ा भी है, एक बात का इत्मीनान है मुझे कि बहुत सारी जगहों के ऊपर कॉपीड प्रोग्राम, इस थीम को कॉपी करते हुए प्रोग्राम्स हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो बहुत अच्छी बात है, वाकई ऐसे ही होना चाहिए था। एक ख़तरनाक बात भी है मुझे कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ उठाना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो बस आप बाकी तो आप खुद अकलमंद हैं, समझ जाइए। हुकूमती सतह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, पिछले साल माह मुहर्रम सफ़र में फ़िरकावारियत को हवा देने की कोशिश की गई, मसलन ज़ियारत आशूरा का मामला लिखा है। इस हवाले से शिया कौम के रिस्पांस को कैसे देखते हैं, जैसे 40 और क्या मुख्तदर हलके में इस फ़िरकावारियत को हवा देने के हक़ में हैं, जबकि वो चाहते हैं कि क्या ना हो, ये सिविल वॉर ना हो। हाँ, ये बात समझ में आती है कि हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। शायद हुकूमत की पहली ख्वाहिश सिविल वॉर ना हो, लेकिन कोई प्रेशर ग्रुप ऐसा हो जिसकी ख्वाहिश हो कि सिविल वॉर के नज़दीक जाए मामला। मसलन कौन हो सकता है? सऊदीस, वो उसी ज़माने में इसराइल के साथ ताल्लुकात कर रहे थे। यूएई इसराइल के साथ ताल्लुकात कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की जैसी कौम इसके ऊपर कंसंट्रेट करे कि कोई मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात कर रहा है, सऊदी जैसे, यूएई जैसे और बहरीन जैसे। तो मुमकिन है कि डाइवर्ट करने के लिए, रिलीजियस एलिमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने सेक्टेरियनिज्म की तरफ एक आग दी हो, और हुकूमत ने भी शायद मुझे लगता है इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि एक हद तक जाने दो ताकि इनका काम भी पूरा हो जाए और बहुत आगे नहीं जाने देंगे। तो मुझे लग रहा है जैसे इन लोगों ने कंट्रोल्ड क्योस क्रिएट किया, उस पार्टी के मकसद को भी पूरा होने दिया और गेम को निकलने भी नहीं दिया हाथ से, बिल्कुल नहीं निकलने दिया। अच्छा चलो, कुछ भी था, मैं एक बात आपसे कहूँगा, हम और आप अल्लाह का करम है, अहले बैत के मानने वाले होने के नाते हम लोग भट्टियों के पिघले हुए लोग हैं, एक दफ़ा नहीं गए हैं, दसियों दफ़ा गए, हमारी तारीख यही है। मेरे दिमाग के ऊपर वाकई एक पॉइंट आया हुआ है, मैं बहुत उसमें स्टक हुआ हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले मौला सातवें इमाम की शहादत के अय्याम थे, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मैं मजलूमियत सोचता हूँ, क्या मजलूमियत है? इमाम के जिंदान के बारे में आपने सुनी है बातें, एक गड्ढा था, इस तरह बयान करते हैं, ज़मीन में गड्ढा था पतला सा, इस गड्ढे में से उतार कर नीचे एक जगह पे छोड़ दिया गया था जहाँ पे न लेट सकते थे न खड़े हो सकते थे। असल आप तसव्वुर करो, मैं ये सोचता हूँ इमाम इस हालत में थे और उनके फर्जंद इमाम रज़ा अपने बाप का इंतज़ार कर रहे थे, बीबी मासूम है खुम अपने वालिद के गम में रो रही थी। हमारे आइम्मा ने ये झेला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन सी कायनात की सख्ती है जो किसी एक इंसान पे आ सकती है और हमारे इमाम ने ना झेली? ये कौम बिला वजह में 1400 साल नहीं बची है, अल्हम्दुलिल्लाह आज परचम अहले बैत सर बुलंद है पूरी दुनिया के अंदर। मैं गारंटी से पहले भी दाइश के ज़माने में भी जब दाइश ने नजफ़ को चैलेंज किया था, मैंने आपकी खिदमत में जुमला अर्ज़ किया था, रूए ज़मीन के ऊपर कोई ताकत नहीं है जो अहले बैत को मानने वालों को चैलेंज कर सके इस वक्त, रूए ज़मीन के ऊपर कोई ताकत नहीं है। अगर मैं कसम खाऊँ, बेहक कसम खाऊँगा, कसम जानबूझ के मैंने ज़बान को रोका है कि मैं नहीं मकरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन कतअन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, रूए ज़मीन के ऊपर कोई ताकत नहीं है जो अहले बैत के मानने वालों को चैलेंज कर सके। अगर करेंगे तो अपनी मौत को जल्दी बुलाएंगे जो आने वाली होगी उनकी। ये आसानी से नहीं हुआ है, लोग भट्टियों में पिघले हैं, बच्चों की कुर्बानियाँ हुई हैं, ख़वातीन की कुर्बानियाँ हुई हैं, हर हिस्से ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद ऐसा हुआ। ये चैलेंजेस क्या चैलेंजेस हैं, ये साजिशें क्या साजिशें हैं जो ये बैठे बाहर बैठकर पाकिस्तान के अंदर रचाते रहते हैं, ड्रामे करते रहते हैं और उनके चंद मानने वाले इधर उधर बलवे करके पाकिस्तान को एक मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं। ये साजिशें कोई साजिश नहीं है, इनको झेला जा सकता है और पैटर्न नज़र आ रहा था इस साजिश का कि मकरो फरेब चलेगा, कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे और फिर मामला दब जाएगा जब इनकी मसलहत पूरी हो जाएगी। हमारे पास एक पॉइंट है, वो क्या है? मुकावमत। यकीनन तकबीर अहम है, बसीरत अहम है, लेकिन सबसे अहम मुकावमत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अहले बैत के चाहने वाले इस पॉइंट को समझते हैं, डरो नहीं, ला तखाफू वला तहज़नू व अंतुमुल आलाऊन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते रहे। तो कतअन हम इससे बहुत बुरे दौर गुजार चुके हैं, ये क्या बेचता है हमारे सामने? आप उस दौर को याद करें जब क्या किस तरह से यहाँ पर हर रोज़ लाशें उठ रही थीं और हमें यकीन उस वक्त भी था, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम का परचम थामना हमारी फतह की निशानी है। और कोई डाउट नहीं है ये भी अर्ज़ करता चलूँ, बहुत टाइम हो गया आपका, लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, आए करीम अलीज़ अल्लाहुल खबीसा मिन अत्तय्यिब, अल्लाह हादसात को लेकर आएगा ताकि पाकीज़ा को ना पाकीज़ा से अलहदा करें, लियो मा हिस्सा, ताकि तुम लोगों के ये तमहीस क्या चीज़ है। आप सोने को ग्रेड देते हैं, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, सोने में ना खालिसी होती है, इसको पिघलाया जाता है, इसको खालिस बनाया जाता है। खुदा मुताल फरमाते हैं, मैं तुम्हें हवादिस से गुजारूंगा ताकि तुम्हारे खलूस में इजाफा हो जाए, तुम्हारी जेनविननेस और बढ़ जाए। तो मसलन कम ग्रेड का सोना पिघल कर अच्छे ग्रेड के सोने पर आए। सही है, हम इन दो मरहलों से गुजर रहे हैं। लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिन अत्तय्यिब, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, तमीज़ होना और तमहीस होना, ये होगा। तुगरबलू सुम्मा तुगरबलू सुम्मा तुगरबलू, तुम लोग छाने जाओगे और छाने जाओगे, यहाँ तक के सब अलहदा हो जाए। तो फस्तकिम मुकावमत, वाहिद हल मुकावमत, तदबीर अहम है, बसीरत अहम है। इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में सवालात तो काफ़ी हैं, सवालात दो चार हैं अभी भी, और मेरा भी अब तकरीबन सही है। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको मैं, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, और वो ख़वातीन का वो जो सेशन हुआ उसको मैं अगली दफ़ा कहीं बोलने की कोशिश करूँगा, वरना अभी ऐसा ना हो कि तेज़ी में बोल दूँ और उसमें कोई गलती हो जाए। ये सब चैलेंजेस आते रहेंगे, लिबरल डेमोक्रेसी के नाम पर जो ईरान में भी खेल होता रहता है, यहाँ पर भी होता रहता है, इस सब को देखना होगा। कॉज सही है, कॉज क्या है, कोई भी इंसान हो, मर्द हो औरत हो, उसे अदल मिलना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, किसी को हक़ नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर जुल्म कर। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ना चाहते हुए बोलना पड़ रहा, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर यकीनन ख़वातीन के ऊपर जुल्म हुआ है, निस्बतन मर्दों पर भी कम जुल्म नहीं हुआ है। यहाँ एक निज़ाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही होने की ज़रूरत है, और यकीनन यकीनन ख़वातीन के हक़ में कोताहियाँ हुई हैं, उनको सही होने की ज़रूरत है, लेकिन किस तरीके से होना है। वो लोग बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि आप कोई भी तरीक़ा कर रहे थे, आप 70 साल में कामयाबी नहीं दिला सके, इसका ये मतलब है कि फिर कोई ऐसा रास्ता लाया जाए जिसमें कौज ही फना हो जाए, कौज ही ख़त्म हो जाए, नहीं ये भी सही नहीं होगा। ये मेरा ख़्याल है, मेरा ज़ाती ख़्याल है वो ये कि कुछ वक्त में मैच्योरिटी और आएगी अभी, और ये जो इस वक्त का एक क्योटिक सीन है ख़वातीन के हुकूक के नाम पर, जो बाकायदा फंडेड, जो अभी तक समझ में आता है कि ट्रूली फंडेड कहीं से इशारा नारे सब कुछ, ये मैच्योर होगा और अल्लाह करे जल्द अज़ जल्द हो जाए, इससे पहले कि ये कौस ही फना ना हो जाए कहीं। तो अच्छे लोग इसको ज्वाइन करें और उसको एक सही पैटर्न के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। देखो एक बहुत सादा सा मामला है, आप स्पेस छोड़ दो, वैक्यूम बाकी नहीं रहता है, अच्छी हवा से फिल नहीं करोगे, बुरी हवा आ जाएगी। आप अगर कोई इंसान प्यासा है और उसको सही पानी नहीं दिया तो क्या करेगा, गंदा पानी पिएगा। वैक्यूम मत छोड़ो, हमने उन बहुत सारी जगहों पे वैक्यूम छोड़ा है, उसको गलत लोगों ने फिल किया है, और उसके बाद फिर हम तड़पे हैं कि ये क्या हो गया, फिर उसकी वो वजह हमारी गलती थी, हमने क्यों इसको एड्रेस नहीं किया था कि इसके बाद फिर हमें ये सीन देखना पड़ रहा। तो बहरहाल इस टाइप के बहुत सारे मसाइल हैं। आपके सब्र तहमुल का बहुत शुक्रिया कि आपने सब्र किया, मैं भी भरा बैठा था बहुत सारी चीज़ों की वजह से, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम बसीरत नसीब फरमाए, और बार बार दुआ यही है, खुदाया इस सख्त वक्त है, ज़हूर से पहले का वक्त यकीनन सख्त होना चाहिए, इस सख्त वक्त में हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार इमाम की मारिफत नसीब फरमा, इमाम की नुसरत की सआदत नसीब फरमा, इस रास्ते में शहादत नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना, खुदाया फिर दुआ कर रहा हूँ, खुदाया रहबर मुअज़्ज़म मराज इज़ाम आयतुल्लाह उलुज़मा सिस्तानी, तमाम उलमाए किराम जो तशय्यो के सही अलम बरदार हैं, पाक परवरदिगार इन सब की हिफाजत फरमा, इन सब के मुआविनीन, इन सब के नुसरत करने वालों, साथ देने वालों के, सच्चे साथ देने वालों की तैदाद में इजाफा फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमारी ज़िंदगियों का इख्तिताम शहादत की मौत करार फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन के तमाम गुनाहान सगीरा व कबीरा की मगफरत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार इमाम की नज़र लुत्फ़ शामिल हाल फरमा, तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए वक्त के इमाम के हुजूर अदाए एहतराम, और इन अय्याम बासआदत के मौके पर मुबारकबादी का पैगाम पहुँचाने के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।